أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی یسر ولا تسر وتمم بالخیر. دورہ قرآن 2024 DQ 2024، اور آج ہم اس میں کریں گے پارہ نمبر 6. لا یحب اللہ. کچھ بھی نہیں ہوا اس جملے کو سن کر، اس بات کو سن کر، کیونکہ یہاں آپ کے مالک کی پسند اور ناپسند کی بات ہے. اور آج تو ہم لوگوں کی پسند اور ناپسند کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہر وقت کہیں میمز بنتی ہیں اور کہیں کچھ بنتا ہے اور کبھی کچھ بنتا ہے. تو ایمان والا جو ایمان کی طاقت 5 سواروں میں حاصل کر چکا، وہ تو لفظ لا یحبہ کا لفظ سنتے ہی پریشان ہو جائے گا، بے چین ہو چکی ہوں گی کہ ہو یہ کون سی بات آج میں سننے لگی ہوں کہ جو میرے مالک کو پسند نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی شعوری طور پر اپنے آپ کو اس سفر کے لیے تیار کرنا کہ میرے مالک تو مجھے محروم لوگوں میں نہ کرنا. اور آج کیا پسند ناپسندیدگی کی باتیں ہم اللہ تعالیٰ کے ناطے سے کر کے اور دیکھنے اور سننے والے ہیں. اگر اس پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا پارہ نمبر 5 کا خلاصہ دے کر آپ کا ذہن پچھلے پارے کے ساتھ جوڑ بھی دوں، کیونکہ قرآن پاک کے نا ہر لفظ کا دوسرے پچھلے لفظ سے ربط ہے، اور ہر کہہ لیجئے کہ سورت کا دوسری سورت سے، اور اسی طرح سے باقی چیزوں کا بھی ربط ہے. پانچویں پارے میں ہم نے سورت نساء کا ایک بہت بنیادی حصہ پڑھا، اور وہ حصہ کیا تھا کہ تم اپنی ذات سے لے کر گھر، اور گھر سے لے کر ملک، اور ملک سے لے کر اس کائنات پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو امپلیمنٹ کرو، پھر تم دیکھو کہ تمہاری دنیا کیسی بنتی ہے. ہم نے پانچویں پارے میں نکاح سے متعلق کافی چیزیں دیکھیں، اور نکاح کی حرمت اور پاسداری رکھنا، وہ معاشرے جہاں عورتیں یا لڑکیاں خود اپنے لیے بر ڈھونڈنے نکلیں یا پھر ماں باپ کے ڈھونڈے ہوئے رشتے ان کو پسند نہ آئیں اور ایک دن پھر وہ تھک ہار کے کہہ دیں کہ جاؤ پھر جو پسند آیا تو ہمیں بتا دینا. یاد رکھیے کہ ان معاشروں میں پھر وہ نسلیں نہیں پلتی کہ جو اسلام کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصر من اللہ ہی پہ ڈیزرو کرتی ہوں. ایسی بچیاں، ایسی عورتیں، ایسے گھرانے، پھر وہ ایسی مثالی کہانیاں نہیں بنتے جیسے کہ ہمارے سلف صالحین کے طور پہ موجود تھا. اور پھر اسی طرح سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جوتا الٹا پہن لو تو چلا نہیں جاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شریعت کو صحیح طرح سے اپنے اوپر امپلیمنٹ نہ کرو تو تم کبھی بھی خوش نہیں رہو گے. پھر ہم نے ایمان کے تقاضے سمے نہ وطا نہ کے سنے تھے. آج انشاءاللہ انہی میں سے بہت سارے تقاضوں پہ ہم نے دوبارہ لبیک کہنا ہے. موسٹ انرچڈ پارہ ہے آج ہمارے سامنے. پھر اہل ایمان کو اپنی حفاظت اور تیاری کا حکم دیا گیا تھا کہ اسلام عدل کی بات کرتا ہے. اگر ایک طرف ہتھیار ہے تو دوسری طرف بھی ہوں گے. اگر ایک جگہ آپ ہتھیاروں سے پاک دنیا بنا لیتے ہیں تو مسلمان بھی سارے ہتھیار پھینک دیں گے. ایک لال بیگ یا ایک کھٹمل کو مارو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کرے تو کیا مسلمان ہی اتنا نائیو ہے؟ مسلمان ہی اتنا بے وقوف ہے کہ اس کے تم جا کر پڑھچے بھی اڑا دو اور وہ صرف پیس پیس کے نام پر تمہیں کچھ نہ کہے؟ تو یہ ظلم اور زیادتی ہے اور بیوقوفی بھی ہے، اور مسلمان اور مومن تو قیس ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے متقین کا انتخاب جنت ہوتی ہے، آخرت ہوتی ہے، دنیا تو راستے میں اس کو مل ہی جانی ہے، یہ سوچ کر وہ ساری زندگی اللہ کے حکموں پہ لبیک کہتا جاتا ہے. اور پھر خاص طور پہ ہجرتوں کی بات تھی، چاہے وہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف کی ہجرت ہو یا کوئی اور، لیکن اس کے ثمرات دیکھے تھے ہم نے. آج اس بارے میں سب سے زیادہ دفعہ آپ کو یا ایھا الذین آمنو کی پکار ملے گی. اس پارے کے اندر ہم سورت نساء کا باقی حصہ اور پھر بہت میجر حصہ سورت مائدہ کا کرنے والے ہیں. سورت مائدہ سے پہلے میں آپ کو اس کا انٹرو دوں گی، بھرپور انٹرو ہوگا آج انشاءاللہ، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ تو آج امت مسلمہ کو اس پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے. लेकिन सूरत माईदा और अन्निसा दोनों को जमा कर लें तो इन दोनों सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू बहुत दफ़ा है। अगर आपको याद है, मैं तो अपनी याददाश्त से बात कर रही हूँ, तो पिछले पारे में 8 पुकारें थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू की, तो सूरत निसा में 8 बार और सूरत माईदा में 9 बार अल्लाह ताला आपको पुकारता है। टोटल 89 में से अगर ये 8 और 9 17 निकाल दें पूरे कुरान में, इतना नहीं जितना इन 2 दफ़ा है। लेकिन हैरत की बात है कि ख़त्म करने के शौक़ में, पढ़ने के शौक़ में हम कभी इस पे तवज्जो कम ही देते हैं। आयतों के नंबर बोल देती हूँ ताकि बाद में आप फिर कभी इन्हीं आयतों की तफसीर सुनकर अल्लाह की पुकारे लें। सूरत माईदा की आयत 1, 2, 6, 6 यानी 8, 8, माईदा 11 यानी 11, और 35, 35, 51, 51, 54, 54 और 57, 57 नंबर आयत में मोहब्बत भरी पुकार है। चलिए अब चलते हैं पारा 6 के थीम पे। आज का पूरा पारा, यानी मेरा तो दिल जैसे डूब नहीं रहा होता बंदे का। मैं जितना इसको स्टडी करती जा रही थी, जितना पढ़ रही थी, जो देख रही थी, उलटते पुलटते छानते फरकते, और कैसे तो मैं हैरान हो रही थी कि आज तक ये पारा क्यों लोगों ने वजीफे में नहीं पढ़ा। इस पारे को क्यों नहीं कहा कि इस पारे को बैठकर 20-25 दोस्तें मिलके पढ़ेंगी ना तो मियाँ की जॉब लग जाएगी। यानी कई दफ़ा हम वजायफ करते हैं ना कई किस्म के, वो भी कुछ बुजुर्गों के तजुर्बे ही होंगे ना। किसी को नहीं तजुर्बा हुआ कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब क्यों हैं, इंडिया के ऐसे क्यों हैं, बर्मा में ये है। मुसलमान मुल्कों ही की बात कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, या दूसरों को भी जहाँ मुसलमान रहते हैं। चलो आओ मिलकर सूरत माईदा का या फिर 6 पारे का वजीफा करते हैं। अल्लाह ने दूध का दूध, पानी का पानी खोल दिए। यकीन करें अगर आज बग़ैर इंटरप्शन के, और मेरी दुआ है कैसा हो आप सुन सके, जान सके और मैं सुना सकी, तो आज यहाँ से उठने के बाद आपके अंदर ज़रूर एक हलचल मचेगी। हम मुसलमान आज खामोश रह के दुनिया को कितनी बड़ी नेमत से महरूम कर रहे हैं, और उनको इस्लाम ना देकर उनके उतरे हुए कपड़ों की तरह, उनके उतरे हुए कवानीन और उनके बाई लॉज पढ़ पढ़ा कर हम वही काम कर रहे हैं जिसको किसी ने कहा था कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ना हम कवे हैं ना हम हंस हैं, लेकिन हमें शौक़ बहुत है ये बनने का। तो आज के इस पूरे पारे का थीम निफाजे शरीयत, और इसके अंडर ले लीजिए तकमीले शरीयत के अहकाम। सूरत माईदा में सबसे ज़्यादा अहकामात हैं। पूरी शरीयत साजी को अगर आप कह सकें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपको आज लॉ पढ़ाने लगी, इस्लामिक लॉज। आप सब आज यहाँ से उठने तक लॉयर बन जाएं, किस चीज़ के? अपने मुसलमान होने के दिफा के। ह्यूमन राइट्स नहीं, विमेन राइट्स नहीं, एनिमल राइट्स नहीं, लेबर राइट्स नहीं, आप ह्यूमन राइट्स मांगेंगे अगर आपको ये समझ आ गया कि आपके रब ने दूध का दूध और पानी का पानी दिया। और इसकी बातें मैंने फिर कहा कि सूरत माईदा के शुरू में ज़्यादा करेंगे। और ये सारा थीम आज बेस्ड है अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम पे, जो बिल्कुल सूरत माईदा के आगाज़ में हम पढ़ेंगे। मुझे है हुक्मे अज़ां। आज इसके अंडर हम एक चीज़ समझने वाले हैं, और वो क्या है कि ऐसे कवानीन को आज भी मुसलमान खुद समझकर और दूसरों को समझाकर अगर सर उठाकर जिएं, तो मैंने अपने दिल की पुकार से एक जुमला लिखा था, ये मेरे अपने नोट्स में लिखा था मैंने, फिर मैंने सोचा कि आप तक भी शेयर कर दूं कि आज का हुक्मे अज़ां क्या है कि आज इस्लाम के माथे पर लगे हुए इल्ज़ामात को मिटाकर उसे इज्जत का झूमर पहनाना है। हकीकत यह है कि हमारे हाथों में हीरा है और हम कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं। इस्लाम एक मुकम्मल साबता हयात है, और ये आपको जीने से लेके मरने, बल्कि मरने के बाद तक के बारे में गाइड करता है। जीपीएस क्या होता है? आपको रास्ता बताता है ना, और आप इस जीपीएस को कहाँ रखते हैं? गाड़ी के पीछे साइड में, उसके वो जो पॉकेट्स हैं उसमें डाल देते हैं, ऊपर रखते हैं। आज इस बारे में हम पढ़ेंगे पिछली 3 किताबें, तौरात, इंजील, जबूर और कुरान को मिलाकर अल्लाह ने कहा कि जो बंदा अल्लाह की वमल्लम यहकुम बिमान जल्लाह, 3 दफ़ा ये जुमला कुरान में आएगा पारे के अंत तक, कि जो अल्लाह के नाजिल किए हुए के मुताबिक फैसले ना करे तो फिर वो जालिम है, वो फासिक है। और अफसोस है कि आज अल्लाह की वो पुकार हम मुसलमानों पर आ रही है। तो मुझे है हुक्म अजां। आज ऐसे मौजूआत पे लोग बात नहीं करते, मैं इंशाल्लाह बात करूंगी, इसलिए कि वो कहते हैं कि बोलने वालों के बोलने ने इस्लाम को इतना नुकसान नहीं दिया, समझ ही रहे होंगे, यानी वो जुबानें जो इस्लाम के खिलाफ आज बोलती हैं और लिखती हैं और बोल बोल के, और आज का तो बोलना वीडियो में भी और ऑडियो में भी और पूरा सोशल मीडिया भी है और आपके न्यूज़ बुलेटिन भी हैं, बोलने वालों ने उतना नुकसान इस्लाम को नहीं दिया जितना अपनों की खामोशी ने दिया। हम मुसलमान आज खामोश हैं, जिसके पास जिस तरह का इल्म है, जिस तरह का नॉलेज है, वो उसके मुताबिक आज खामोश है। इस जुर्म की सज़ा में आज हमारी नस्लें बिल्कुल कह सकते हैं कि बिकी पड़ी हैं, परेशान हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि कैसे खुदकुशियाँ हो रही हैं। अब स्ट्रेस और डिप्रेशन तो दूर हो गया, परेशानियाँ वो तो बिल्कुल छोटी रह गई। अब तो वो कहते हैं जान छोड़ो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, चलो दोनों मरते हैं। एक शख्स ने कुछ हालात के तहत इकट्ठे हुआ, बीवी थी, दो बच्चे थे शायद, खुद था। एक हालात ऐसे हुए कि उसको जॉब बड़ी अच्छी थी, दौलत थी, माल था, सब कुछ था, उसकी जॉब चली गई, थोड़ी बहुत कोशिश की सही हो जाए, हुआ जाए, नहीं हुआ तो बीवी को कहता है कि चलाओ मर जाते हैं। बीवी उसके साथ है, दो बच्चे हैं, सबसे पहले उसने बीवी को शूट किया, फिर उसने बच्चों को शूट किया और फिर खुद शूट हो गया। क्या ये हम मुसलमान माँ बाप के लिए लम्हे फिक्रिया नहीं? क्या हम अपने बच्चों के बारे में कोई अच्छी उम्मीद रख सकते हैं इसके सिवा कि अल्लाह ताला उनके दिलों को खोल दे? तो इंशाल्लाह इसके लिए फिर ईमान की ताकत है। और आज के इस पारे में से जो ईमान की ताकत का टॉपिक है, वो हम किस हाथ से लेंगे कि अगर आपने इस्लाम पे और शरीयत पे अमल करना है तो इसके लिए आपको मजबूत ईमान चाहिए। शरीयत को अपने वजूद से लेकर शहर, गली, मोहल्ला, मुल्क और फिर पूरी दुनिया पर नाफिज करने का गोल है, और उसके लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है, वो एटॉमिक नहीं, वो न्यूक्लियर नहीं, वो वेपन्स नहीं, वो ईमान की ताकत है। सहाबा किराम इसी ईमान की ताकत पे पूरी दुनिया में छा गए थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जिस दिन बैतुल मक़दस के फ़ातह बनकर चाबी लेने जा रहे थे, तो उनकी आंखों में कितनी रौनक थी और वो कितना अल्लाह के आगे झुके हुए और बंदों के सामने खड़े थे, ये आज हम रासिखूना फिल इल्म में पढ़ेंगे। अल्लाह ने आज रसूख वालों की बात है, चार खूबियाँ दूंगी आपको कि रासिखीन कौन होते हैं जो इल्म है। लेकिन हकीकत यह है कि आज ना हमारा ईमान वो है और ना दूसरी चीज़ें वो रह गई, और हम हर वक्त माजरत ख्वाह खाना अंदाजी इख्तियार किए हुए हैं, हम शर्मिंदा हैं। तो लिखिए, वी आर नॉट एम्बेरेस्ड मुस्लिम एनी मोर, सर उठा के जिए, वी आर ब्लेस्ड टू बी मुस्लिम। और जिस दिन आपने अपने बच्चों को ये सबक पढ़ा के याद करा दिया, तो फिर कहते हैं कि लौह कलम भी दे रहे हैं। तकदीर के ये फैसले आपको दुनिया में इधर से उधर लिखे हुए अल्लाह के दिख रहे हैं, और अल्लाह करे कि हमारे अंदर से ये जो एक मरगूबियत और मरूबियत का है ना, तो उसको निकाल दे। तो कह लीजिए कि इम्प्रेस नहीं होना, टू बी इम्प्रेस्ड होना, वी शुड बी इम्प्रेसिव नॉट टू बी इम्प्रेस्ड। और इसी तरह से इस बात का यकीन कि मैं जितना इस्लाम पर अमल करूंगी, मैं उतनी ही बाइज्जत होंगी। कुरान पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा फिक्र लग जाती है तो अपनी इज्जत की, क्योंकि अपने भी खफा, मुझसे बेगाने भी नाखुश। तो आज इंशाल्लाह इस बात का यकीन होगा कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह यतकाकुम, आप अमल करते जाइए, घर वाले थोड़ा सा शुरू में नाराज़ होंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, बाद में बाहर इज्जत करेंगे, बाहर जाकर कहेंगे ऐसी हैं वैसी हैं, और बाद में आपके मुंह पे भी कहेंगे। और फिर आखिरी नुक्ता जो हम हमेशा कर रहे हैं चीज़ों में, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। आज इस थीम के अंडर ख़ास तौर पर भी सूरत मायदा के अहकाम की नज़र करूँ, तो अल्लाह के नबी सल्लम की वो हदीस के ज़मीन पर एक हद का नाफिस होना, 40 साल की बारिश से या 40 दिन की बारिश से, यानी लफ्ज़ 40 इस्तेमाल होता है, इससे ज़्यादा नफ़ामंद है। आज उम्मते मुस्लिमा में क्या चीज़ की कमी है? लेकिन कहीं हमारी से है, कहीं हम बड़े हैं, क्या आज हम इज्जत वाले हैं क्या नहीं हैं? बहुत साल पहले का सुना हुआ एक जुमला, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा साहब थे, हम उस वक्त अपनी टीन एज अर्ली टीन एज की ज़िंदगी थी, इनका टीवी पे प्रोग्राम आता था, और मैंने किसी को तहजीब से अगर बात करता दीन के नाम पे सुना है, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे जहन में वही शख्सियत है, तहम्मुल से बात करनी, कुछ उनकी रिजेम्बलेंस भी हमारे वालिद से थी, मेरे जहन में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, हालांकि मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता और अभी भी नहीं पता कि उनका मसलक जमात क्या थी। लेकिन उन्होंने एक वाक्या सुनाया था अपने किसी लेक्चर में, क्योंकि ये सऊदी अरब में रहते थे, तो कहते थे कि मैं पाकिस्तानी था तो लेकिन सऊदी अरब में रहता था तो उर्दू बोलता था, तो इर्द गिर्द के जो लोग थे वहाँ कुछ अपने लोग जानते थे इनको। तो एक दिन एक बच्चा दौड़ता हुआ इनके पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब क्या हुआ है? कहने लगे कि पाकिस्तान में ऑयल निकल आया है। अब आप कहते हैं कि ऑयल इज ब्लैक मनी, जिसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड कहते हैं उसको। तो इन्होंने कहा, अरे तुमने ये बात कहाँ से सुनी, तुम कहाँ से ये खबर सुन के आ गए? कह रहे नहीं, वो भी जनरल जियाल हक का एक इंटरव्यू आया है कि हम पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करेंगे, इस्लामिक शरीयत को नाफिज करेंगे, देखना पाकिस्तान में भी ऑयल निकलेगा। अब ये एक मासूम सा वाक्य है, और आज जाकर तारीख खोलकर सिर्फ सऊदी अरब लव्स की हिस्ट्री लिखिए, ये सऊदी अरब जिसको इस वक्त हम उम्मत मुस्लिमा बिल्कुल एक अपना मैका और मक्का कहते हैं ना, इसमें ऑयल नहीं था। ये बंजर और वीरान, गैर अजीज और हिंदी, ये इतने खूबसूरत बड़े बड़े कासल नुमा महल और ये बंगले बिल्ले, पानी नहीं था। जिस वक्त उस दौर के हुक्मरान ने, जो उस दौर में थे, इस्लाम की निफास की बात डिक्लेयर की थी, उसके फौरन बाद ऑयल के कुएं निकले थे। और ये जो दबी दबी खबरें, तो हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान में सोने के और पता नहीं किस किस के पहाड़। तो बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं हो रही है, तो उर्दू की नस्बत है ना। याद रखिए, आप और मैं नसरु मिन अल्लाह की वफतहुन करीब को अपने ऊपर ले लीजिए, बाकी सबको छोड़ दें। आप कहते हैं फुलां बड़े आराम से दीन का काम करता है जी, क्यों ना करे? भाई ये देखें उनके मियाँ कितने अच्छे हैं, वो देखें उनकी तो सास भी इतनी अच्छी, उनके तो बच्चे भी अच्छे, फिर उन्होंने तो करना है। कभी इसके पीछे भी सोचा आपने? घर वाले अगर मुआविन बनाना चाहते हैं तो नसरु मिन अल्लाह की वफतहुन करीब की एक सूरत है ये। आप और मैं एक औरत हैं, एक वुमेन, एक लड़की औरत, जो भी आप अपने आप को कहते हैं, आपको इस पे नसरु मिन अल्लाह की वफातुन पे जो यकीन होना चाहिए, वो किसी दुनिया के मुल्क में इस्लाम का निफास जो आपके मेरे इख्तियार में है कि नहीं, उस पे नहीं। अपने इस 5 से 6 फुट के वजूद पे आप इस्लाम नाफिज कीजिए, अल्लाह की मर्जी के बनिए, जिससे उसने रोके रुक जाइए, फिर देखिए आपके घर क्या, वो आपके अपने प्यारे, आपके ससुराल तक आपकी इज्जत करेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। तो इंशाल्लाह हमने अल्लाह ताला के इस पूरे दीन को लेकर चलना है, और जितना ज़्यादा हमारा इसके ऊपर शरह सदर होता जाएगा, आप खुद इस बात की गवाही देंगे कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इसमें आसानियाँ कर दी। अब चलते हैं हम अपने आज के तर्जमे के ऊपर, जिसमें सारा कुछ छुपा हुआ है। ये तो चंद मैंने आपको पॉइंटर्स दिए हैं, बिलीव मी असल खजाना तो ये कुरान है, जिसको अगर आप और मैं कान खोलकर सुन लें और दिल के कानों से इसको सुनने लगें, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खैर होगी। तो सूरत निसा की आयत नंबर 148 से 176 यानी एंड सूरत तक आज इस पारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। रुकू नंबर 21 है सूरत के एतबार से, 148 से 152। टॉपिक लिखिए, बुराई का चर्चा ना करो। अल्लाह ताला की कुछ पसंद और नापसंद का तस्करा है कि कैसे अल्लाह ताला अपने बंदों को मुख्तलिफ तरीकों से मैनर सिखाकर पाक साफ बनाना चाहता है, उनके वजूद को दूसरी दुनिया के लिए बेहतरीन रोल मॉडल बनाता है। जैसे माँ अपने बच्चे के बारे में क्यूरियस होती है कि मेरा बच्चा बदतमीजी ना करे, मेरा बच्चा बुरे काम ना करे, मेरे बच्चे के अंदर बुरी चीज़ें ना आए, क्योंकि मेरा बच्चा अगर गलत काम करेगा तो मेरे लिए भी और अपने लिए भी बदनामी का जरिया बनेगा। तो आइए जरा देखते हैं कि आज आपका रब आपको क्या कहता है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू इल्ला मन ज़ुलिम। बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, मगर मजलूम को इजाज़त है और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। अगर तुम किसी नेकी को ऐलानिया करो या पोशीदा, या किसी बुराई से दरगुजर करो, बस यकीनन अल्लाह ताला पूरी मुआफ़ी देने वाला और पूरी कुदरत रखने वाला है। जो लोग अल्लाह ताला के साथ और उसके पैगम्बरों के साथ कुफर करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फ़र्क रखें, और जो लोग कहते हैं कि बस नबियों पर तो हमारा ईमान है और बस पर नहीं, और चाहते हैं कि इनके दरमियान राह निकालें, यकीन मानो कि सब लोग असल में काफिर हैं, और कुफार के लिए हमने इहानत अमेज़ यानी उनके लिए कह सकते हैं आपके तकलीफ़ देने वाली, उनकी बेइज्जती करने वाली सज़ा तैयार कर रखी है। और जो लोग अल्लाह ताला पर और इसके तमाम पैगंबरों पर ईमान लाते हैं, इनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, ये हैं जिन्हें अल्लाह ताला इनके पूरे सवाब देगा, और अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला और बड़ी रहमत वाला है। ये था जी पहला रुकू। इस एक रुकू में दो आयात ईमान से मुतल्लिक है, 150 निसा व यकूलून नो मिनु बिबादिन व नकफुर बिबाद। इसमें आपके मेरे लिए मैसेज क्या है कि हक परस्ती और नफ्स परस्ती के दरमियान रास्ता निकालना ताकि ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएं और इंसान जन्नत भी पा ले। ये वही मजमून है जो हर पारे में रंग बदल के आ रहा है। पहले पारे में अफतू में नून अबी बादिल किताबी व तकफुरू नबी बात की बात थी ना, तो याद रखिए कि आधे दीन के साथ अल्लाह की पूरी मदद नहीं मिलती, जन्नत कहाँ मिलेगी। फिर उसके बाद आयत नंबर 152 वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, इसमें मैसेज क्या है कि एक नहीं बल्कि सब पैगंबरों पर ईमान लाना है। अल्लाह ताला ने जो भी पैगंबर भेजा वो किसी सोच के साथ भेजा और तुमने उसके ऊपर ईमान लाकर अपनी सच्चाई का सबूत देना। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जो इसमें एक पैगाम है वो क्या है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिसू इल्ला मन जुलिम। ये बहुत अहम बात है, इसके ऊपर जरा सी तवज्जो अगर मैं और आप दे के सुने, आज चारों तरफ किस चीज का दौर है। आपने देखा होगा कि पहले दौर में जब कोई गीबत करता था, कोई बुराई करता था, उसको जाना पड़ता था, वहां बैठना पड़ता था, उसको ताने देने पड़ते थे कुछ, फिर जाके कोई बुराई करता। आज का दौर जो इतना फास्ट दौर हो गया है, आज हमारा एक दूसरे के ऊपर बात करना, हमारा किसी एक दूसरे को किसी ऐसी चीज से रोकना कि जिसमें आप कह सकते हैं कि खैर फैलती हो, कितना आसान हो गया। हम सब जानते हैं आज लाइक्स, अल्लाह ने कहा ला युहिब्बा, नहीं पसंद करता। आज लफ्ज़ लाइक हमारे लिए बिल्कुल बदल चुका है उस लफ्ज़ से जो आज से कुछ साल पहले था। आज चैनल्स के नाम पर और सोशल मीडिया के नाम पर और एक से ज्यादा चीजों के ऊपर लोग कहते हैं उसके कितने लाइक्स हैं, उसको कितने लोग सुनते हैं, उनकी वीडियो कितनों ने क्लिक की है, और ये और वो। यानी एक पूरा कमर्शियल माफिया बन चुका है इस वक्त। कोई गिर गया सड़क पे तो उसकी तस्वीर बना दी, सेल लगी औरतों जाके झपट पड़ी तो उसकी तस्वीर वीडियो पे वायरल कर दी। आज जरा सा अगर हम अखलाकियात को सामने रखें, इस्लाम की बात ना कीजिए, तो हम मुसलमान कितना ज्यादा हद से गिर गए। एक औरत घर से शॉपिंग करने निकलती है, वो क्या पहनती है, वो नहीं पहनती, मोटा पहनती पतला पहनती, किसी का इससे कोई ताल्लुक है? लेकिन आप उसको पकड़कर सात समंदर पार बैठे मुसलमानों की आंखों में लाकर उसके ऊपर बातें करते हैं, पुलिस बुला लेते हैं। ये शर्म की बात नहीं है? ये बेगैरती की बात नहीं है? और फिर जब लोगों की इज्जतें उछलती हैं, कोई हुक्मरान है वो वोट लेके आया के बगैर उसके आया, या उसने क्या किया, उसका अमल है। आप उनके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस बना दें कि वो पब्लिक में बाहर आए ना, किसी को देखकर चोर कहना और किसी को डाकू कहना और किसी को कुछ कहना, क्या ये मुसलमानों का काम था? क्या अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के दौर में या उमर फारूक की खिलाफत के दौर में ऐसा हुआ? यानी आज हकीकत है हम अल्लाह के नबी का वो सबक भूल गए हैं कि लोगों तुम्हारी जान माल और इज्जत एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है जैसे कि आज का दिन। तो आज उम्मत मुस्लिमा इज्जतें उछालती है। एक दौर था इज्जत का चोर किसी बड़े काम पे कहा जाता था, इज्जत लुटती थी, इज्जतों के दुश्मन थे, लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों पे लोगों को बदनाम करते हैं। और कोई कंपनी कोई फिल्म जरा सी चीज हुई, पहले दौर में आप देखते हैं कि क्या था कि कोई बात होती थी तो लोग उसको पेश कर देते थे, किसी तक बात गई किसी की नहीं। आज आप किसी एयरलाइन को बदनाम करना चाहे एक खबर आम कर दीजिए, लोगों ने फिर वो तोते की तरह उसी बात को बगैर तहकीक किए आगे से आगे चलाना है और उसको ऐसे आगे बचाना है जैसे वो खुद न्यूज़ चैनल चलाने वाले हैं। तो याद रखिए कि अल्लाह ने आपको मुझे इस दुनिया में बहुत आज़ादी दी है। गंदी बातें ट्रैश होता है। आपके घर में कचरा कहाँ फेंकता है? और ख़ास तौर पे किचन में काम करने के बाद ट्रैश को क्या सारे ड्राइंग रूम में लेके फेंकते हैं? ट्रैश कैन को आज जाकर उसका मुंह खोल कर ना पूरे घर में से फिराइए, फिर उसको बाहर अपने ड्राइंग रूम में रख दें और उसके बाद फिर हम इनडोर पे रख दें। तो बहरहाल अल्लाह मुझे माफ़ करे, तो बात समझ गए होंगे आप लोग के आज दुनिया में अखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है। मुझे नहीं पता गोरे क्या करते हैं लेकिन मुझे कालों का पता है। हमारे कल्चर में ख़ास तौर पर ये है, आप जो चीज़ अपने लिए पसंद नहीं करते वो आप दूसरे के लिए भी पसंद नहीं कर सकते। एक हदीस पे अगर आज उम्मत मुस्लिमा अमल कर लेना तो आप देखेंगे कि बाकी सारे काम जो है वो आसान होंगे। फिर क्या कहते हैं अवेयरनेस है जी, आज एक तो ये जो बिजनेस हो गया अवेयरनेस कम्पेन के नाम पे वीडियोस बनाते हैं और क्या क्या करते हैं, हमें बड़ा दर्द है फलां दी ऑयल पानी में ये डाल के बेच रहे तो फलां से, सिर्फ पैसे का खेल है। कोई ऐसा वहां पे एक मैसेज डाल दो कि हर बंदा मजबूर हो जाए किस चीज पे, कि वो वीडियो आपकी खोलेगा। और फिर साथ कहते हैं अगर आपने इसको ना आगे किया तो आप मुसलमान ही नहीं है, और वो एक फिल्म रिलीज हो गई और अब ये हो गया। फिर कई सालों से वो मैसेज आ रहा है, आपको पता है कि वो काफी पुराना मैसेज है, लेकिन वो आ रहा है तो आ रहा है। तो याद रखिए कि ये मुसलमान का मिजाज नहीं है। आप और मैं अपने अखलाक को बेहतर करना चाहें तो हमेशा अपने लिए बस एक बात सोच लें, जो चीज़ मैं दूसरे के लिए करने लगी हूँ क्या मैं खुद उसको अपने लिए पसंद करूँगी, दैट्स इट। और अल्लाह के नबी का तो एक एक मोती ऐसा है जुबान का कि जो आपके मेरे लिए बहुत यानी फायदे देने वाला है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इस हिस्से में अपने वहदत ध्यान की बात सुनी है, कुछ लोगों का आज ख्याल क्या है कि सिमिलेट करते करते तुम मुसलमान दूसरों के दीन पे भी आ जाओ तो कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि फिर इससे दुनिया में अमन आएगा। याद रखिए दीन इलाही अकबर जो बादशाह था उसके दौर में आया था, या फिर आज के दौर के सारे दीनों को लेकर एक ब्लेंडर में डाल के उसकी स्मूदी बना के पी लो, ये इस्लाम का दीन ही। इस आयत में अल्लाह ने इस चीज से मना करके आपको मुझे ये सिखा दिया कि ये जो कहना कि मंदिर मस्जिद एक हिकड़ो नूर, ये सारी बातें आज से नहीं, ये शुरू से है। मक्का वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुतालबा किया था आप जानते हैं? चले आप अब और कुछ नहीं ना, तो फिर ऐसा करें कि आप एक साल आप हमारे खुदाओं को पूछ लें, एक साल हम आपके पूछ लें, लकुम दीन अकुम वलीय दीन। तो ऐसी असिमिलेशन दुरुस्त नहीं है। फिर एक और चीज़ जो हम लोगों के साथ अपने मामलात को देखना चाहें तो उसमें से नोट कीजिए कि ठीक है इंसानों की इस दुनिया में रहते हुए हमें लोगों की कमियां बेशियां दिखेंगी, अपने इर्द गिर्द रहने वाले जो हैं उनके अंदर खराबियां होंगी, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला सुबह शाम लोगों के जरायम नज़रअंदाज करता है। बंदों को भी यही अखलाक अपने अंदर लाना है। किसी के घर जाएं अगर तो आपको आंखें बंद करके जाना है। आप देखेंगे कि इस एक पूरे रुकू में आप देखें दो मुख्तलिफ चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अगर आपने आयतों का तर्जमा थोड़ी सी तवज्जो से सुना हो तो आप देखेंगे कि दूसरों की बुराइयों पे नज़र रखने वाला असल में अपने इस्लाम में कच्चा है, उसको अल्लाह सुब्हान तआला की वो खूबियाँ नहीं पता। और फिर हम कहते हैं क्या करें, आंखों से देखा है बोलें, तो एक जुमला लिखिए कि दुनिया के नुकसान से ज़्यादा आखिरत के नुकसान पे नज़र हो तो जुबान छोटी हो जाती है, क्योंकि आप दिल बड़ा कर लें जुबान खुद ब खुद छोटी होगी। तो एक कोड वर्ड बना लीजिए आज से अपने लिए, जुबान छोटी दिल बड़ा। फिर वो ससुराल में बच्चियां जाएं या आप किसी जगह काम कर रहे हैं या आपके हस्बैंड किसी ऑफिस में काम करते हैं, ये हो नहीं सकता कि आपको लोगों की कोई बुराई ना दिखे। इंसान अपने वजूद के एतबार से भी और हकीकत के एतबार से भी उसमें अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, हर एक में होती है, तह में हमेशा गंद होता है। इसका इलाज क्या है? बड़े गम में मुब्तला हो जाए। और वो बड़ा गम क्या है? आखरत का। बड़े गम में मुब्तला शख्स को छोटे गम भूल जाते हैं, इसलिए हमें अपने इल्मे आखरत को फिक्र आखरत में डालना है। माफ़ करिए हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं हमें आखरत की बड़ी फिक्र है, वो फिक्र नहीं है, वो सिर्फ इल्म है। फिर इसी तरह माजी के पैगम्बर को मानने के लिए हर कोई तैयार है, हर एक इब्राहिम अलैहि सलाम से अपना ताल्लुक जोड़ रहा है, यहूद भी, नसारा भी, मुशरिकीन मक्का भी, और ऑफ कोर्स मुसलमान भी। लेकिन वक्त के पैगंबर यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने को तैयार नहीं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि माजी के पैगंबर को मानना तकलीदी ईमान के तहत होता है, उसके साथ कई नस्बतें जुड़ी होती हैं, उसके साथ कई रिवायतें हैं ना, क्योंकि मशहूर हो गए ना, फेमस थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो आज कुछ कह ही नहीं रहा आपको, उसके मानने ना मानने से आपको अपने अमल में कोई तब्दीली नहीं करनी। इसके बरअक्स वक्त के पैगंबर को मानना इरादी ईमान के तहत होता है। मक्का वाले नबी के दुश्मन थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कसीदे पढ़ते थे, यहूद हजरत इब्राहिम की नस्ल से खुद को कह रहे थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं थे। यही आम तौर पर लोगों का हाल अपने उस्तादों के बारे में भी होता है, अपने मेंटोर्स के बारे में भी होता है। अपने सामने मौजूद उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे और पिछले लोगों की, बुजुर्गों की बड़ाइयां बयान करेंगे। अपने माँ बाप के साथ भी हमारा यही मामला होता है, माँ बाप की हम बात नहीं मान रहे होते बचपन में, अपने और हिसाब से नहीं मानते, बड़े होके और हिसाब से नहीं मांगते, और वो नानी दादी उसका और अपना बचपन के किस्से याद करते रहते हैं। तो ये भी एक किस्म की नाशुक्री है। अपने लिए एक अमल लिखिए, बदगोई कचरा है लिहाजा कचरे का ढक्कन बंद कर दीजिए। किसी के घर अंधों की तरह जाइए यानी कुछ ना देखिए बुराई उनकी, कोई खराबी उनके अंदर की आपको ना दिखे, और गूंगों की तरह वहां से निकल आइए, यानी वहां से आने के बाद अब किससे ना लोगों को सुनाएं कि घर ऐसा था या वैसा था। आमतौर पे पहले दौर में जब लोग किसी जगह कोई ऐसी चीज़ देखते जो अनयूजुअल होती तो फौरन उसकी बुराई करते कि लो काल। आज लोग कैमरे खोल लेते हैं किस लिए, कि ज़रा तस्वीर सेव कर लें। तो वो दिल ट्रैश कैन से भी ज़्यादा बदबूदार हो जाते हैं जिनमें लोगों की बदगुमानियाँ भर जाती हैं। अल्लाह हमें बचाए, और किसी के साथ भी कोई मामला करें तो उस वक़्त एक बात अपने आप को ज़रूर बताइएगा कि कहीं मेरा हाल ऐसे तो नहीं कि हम अपनी गलतियों के बेहतरीन वकील और दूसरों की गलतियों के बेहतरीन जज होते हैं। हम अपना दिफा करते हैं और दूसरों के लिए जजमेंटल होते हैं। और इसी रुको में एक और मैसेज था कि आप जो मर्जी कोशिश कर लें, ये दुनिया कभी जन्नत नहीं बनेगी। असल जन्नत आपको मुझे आखिरत में मिलेगी। फेथ इन एक्शन के पॉइंट्स, दूसरों के ऐबों की पर्दापोशी करनी है, अब औजदाद की अंधी तकलीद नहीं करनी और लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करना है। अल्लाह मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए।